أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجیے. مرحلے وار ایک گفتگو جس کا آغاز پچھلی دفعہ ہوا تھا، آج اسی سلسلے کا درس نمبر 2 کہ اہم ترین چیز اور ایک اسلامی فریضہ نماز، کون کون سے ایسے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے کہ اپنی اس نماز کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں. آج کے اس درس میں ہم بہت سے پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ کیا کسی مصروفیت یا بیماری کی وجہ سے نمازوں کو ترک کیا جا سکتا ہے، نماز مومن کی کیسے حفاظت کرتی ہے، مشکل حالات میں ہم نماز کی پابندی کیسے کریں، ترک نماز کے کیا کیا عذاب ہیں، نماز مومن کی معراج ہے جو کہ حدیث ہے، یہ کس طرح سے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، دہشت گردی کے اس زمانے میں نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کی فقہی اور اخلاقی مسائل جاننے کی اہمیت کیا ہے. اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ نماز اصل میں خدا سے بات کرنے کا ایک ذریعہ. روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ خدا سے بات، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو آپ تلاوت قرآن کریں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو آپ تلاوت قرآن کریں، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ خدا سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں. نماز خدا سے متصل کرنے والی ایک چیز ہے. روزانہ 5 مرتبہ ہمارا رابطہ اس نماز کے ذریعے پروردگار عالم سے ہوتا ہے. یہ جو روزانہ کی نمازیں ہیں، پھر مستحب نمازیں وغیرہ بھی جو آپ پڑھتی ہیں، دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ، بہت سے لوگ تو اعتراض کے طور پر بھی اس بات کو اٹھاتے ہیں، یہ بار 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 نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اتنی تکرار کے ساتھ نمازیں ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ماشاء اللہ بہت سے لوگ تو اس کو عبث بھی شمار کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نماز اصل میں ترقی کا ایک زینہ ہے. سیڑھی پر بار بار نہیں چڑھنا پڑتا، آپ بار بار ہر دفعہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتی جاتی ہیں. جتنا آپ سیڑھی کے اوپر چڑھتی جاتی ہیں اتنا آپ کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. نماز میں بظاہر تکرار ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ نماز ایک بیلچے کی طرح سے، کنویں کو جب کھودا جاتا ہے اور بار بار بیلچے کو زمین پہ مارنا ضروری ہے. دیکھا جائے تو بیلچہ مارنا ایک تکراری کام ہے، ایک چیز آپ بار بار آپ کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جتنی مرتبہ بھی آپ بیلچے کو زمین پہ ماریں گی اور مٹی نکالتی جائیں گی، اتنا ہی آپ پانی سے قریب ہوتی چلی جائیں گی. تو جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں گی اتنا ہی آپ خدا سے زیادہ قریب ہوتی چلی جائیں گی. جتنے زینے آپ طے کرتی جائیں گی اتنے ہی آپ آسمان کے قریب ہوتی چلی جائیں گی، اور یہاں تک کہ ایک دن آسمان کی بلندی پر انسان پہنچ سکتا ہے. یہ نمازیں بھی اسی طرح سے ایک دن آپ کو قرب پروردگار کی منزل پر لے جائیں گی. نماز میں بظاہر تکرار ہے، لیکن حقیقت میں نماز پروردگار کی طرف ایک پرواز ہے. اب مصروفیات کا بہانہ کر کے لوگ نمازوں کو ٹالتے ہیں، اور یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا اول وقت کم سے کم نہیں پڑھتے، وقت فضیلت پر نہیں پڑھتے. یہ سخت توہین ہے، سخت بے ادبی ہے نماز کی. عام سے لوگ اپنی معمولی سی مصروفیات کا بہانہ بنا کر کس طرح سے نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اول وقت میں نہیں پڑھتے، جبکہ بڑے بڑے عہدے دار بہت سی چیزوں میں باقاعدہ مثال کے طور پر بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں، خود ایران کے صدر، یعنی اگر نماز کے وقت میں کبھی کوئی تنگی ہوتی ہے یا اول وقت نکلا جا رہا ہوتا ہے تو اس تصویر میں کئی تصویروں کو جوڑ کے تصویر بنائی گئی کہ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مار کے نیچے اترے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے اپنی جیکٹ اتاری ہے، آستینیں چڑھائیں اور وضو کے لیے تقریباً بھاگتے ہوئے، نہیں اتنی اہمیت ہے एक प्रेसिडेंट कितना मसरूफ होता है किसी मुल्क का, लेकिन क्या है कि अगर वाकई किसी को नमाज की अहमियत का एहसास हो तो वो इसी तरह से जल्दी दिखाएगा, उस रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार के हुजूर में, उसके दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया है, अब इसको टालना सही नहीं। इसी तरह से इनकी एक अपनी तरीक़ेकार भी है, तो लोगों को अच्छाई देखी बताने की जरूरत पेश आती है। कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी अब नमाज का अव्वल वक्त आ जाए, जहां पर भी मौजूद हो वहीं पर ही, चाहे रोड के किनारे गाड़ी रुकवा के क्यों ना नमाज पढ़ते। इसी तरह से मसलन किसी जगह का इफ्तिताह करने के लिए जाए, एक टनल का इफ्तिताह करने के लिए गए, एक सुरंग का जो बनाई गई थी, नमाज का वक्त आ गया, वहीं कारपेट बिछाया, वहीं नमाज शुरू कर दी। इसी तरह किसी शहीद के घर मसलन ताजियत के सिलसिले में गए, उनकी बरसी के सिलसिले में, नमाज का वक्त आया, वहीं नमाज जमात कायम कर ली। इसी तरह से अगर जहाज में मौजूद है और अव्वल वक्त नमाज का वक्त आ जाए, तो क्योंकि खुद प्रेसिडेंट नमाज पढ़ रहा है तो खुद दीगर अफराद भी नमाज की तरफ मुतवज्जे, और जहाज के अंदर भी नमाज जमात कायम की जाती है। और पिछली मरतबा तो आपने देख ही लिया था इमाम खुमैनी बिल्कुल आखिरी लम्हात में किस तरह से उन्होंने नमाजें पढ़ी, और उसके बाद एक चीज तो आपको दिखाई भी नहीं थी, उसमें इतना वक्त भी नहीं था कि ऑक्सीजन मास्क भी मुंह पे लगे हुए हैं, बहुत सख्त ऑक्सीजन की कमी थी, और उतनी खराब हालत में भी नमाजों को तर्क नहीं किया। हालांकि अगर हम बज़ाहिर अमूमी निगाह से देखें, जो शख्स इनकलाब इस्लामी ईरान, पूरी दुनिया में एक इस्लामी इनकलाब लेकर आया हो और पूरी जिंदगी जो है इबारत रही हो परवरदिगार की इबादत से, तो अभी बीमार भी है, उठा भी नहीं जा रहा है, चंद दिनों की नमाजें बज़ाहिर कज़ा हो भी जाती तो एक आम आदमी की निगाह में कौन सा ऐसा फर्क पड़ना था, लेकिन नहीं, जो जिनके इतने बड़े मर्तबे होते हैं उनको उसका अहमियत का एहसास होता है। इसी तरह से हम तो मामूली बीमारियों की वजह से देखिए टालते हैं, कितने माजूर ऐसे अफराद हैं जिनको इस बात की अहमियत का एहसास है, यानी नमाज जमात में अपना स्ट्रेचर बाकायदे जिसके नीचे व्हील्स वगैरह लगे हुए हैं वो लेकर आया, और वो इस तरह से लेट कर, क्योंकि टांगे कटी हुई हैं, क्या है इसके साथ मसला, लेकिन नमाज जमात को सूरत में भी इसने तर्क नहीं किया। कितने ऐसे अफराद हैं कि एक हाथ नहीं है उनका, एक हाथ से कुनूत पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि नमाज को तर्क नहीं करते। वो जंग के अंदर और मुख्तलिफ उसमें ऐसी हालतें लोगों की हो गई, लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद भी नमाज का ज़ौक़ो शौक़ कैसा है। माजूर अफराद, हम तो टांगों वाले, हाथों वाले, हर लिहाज से सेहतमंद अफराद को देखते हैं कि उन लोगों की क्या हालत है, लेकिन जिनके हाथ कटे हुए हैं वो भी कुनूत में अपने उन्हीं कटे हुए हाथों को उठाकर और नमाजें जो हैं वो पढ़ते हैं। इसी तरह से जिन अफराद की टांगे नहीं हैं या जो और माजूर अफराद हैं उनका भी अगर आप देखें तो तकरीबन यही सूरत हाल हमको नजर आती है। जंग में तो बहुत अजीब व गरीब किस्म के मनाजिर फौजियों के देखने में आते थे, बीमार हैं, ट्रिप लगी हुई है, वहां से जंग पे हैं, लेकिन उस सूरत में भी नमाजों को कभी भी इन लोगों ने फरामोश नहीं किया। बहुत से ऐसे मरीजों की पूरी पूरी जमात की नमाज हो रही है, ड्रिपे लगी हुई हैं, माजूर भी हैं, व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फिर किसी बात की परवाह नहीं की जाती। इसी तरीके से माजूर खवातीन, उनके लिए खुद कितना मसला है, व्हील चेयर चलाना, इन इज्तिमात के अंदर जाना, झुक भी नहीं सकते, बाकायदा चीज बनवाई हुई कि सजदा करने के लिए, जो कि इंशाल्लाह आगे के कुछ अहकाम के अंदर अगली क्लासेस में बयान भी होगी। जले हुई हालत के अंदर अफराद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नमाज के फरीजे से गाफिल नहीं। यहां तो हम दोनों टांगों वाले भाग दौड़ करने वाले अफराद को देखते हैं, और एक चीज और, जब दूसरों की बात बयान कर रहे हैं तो खुद माशाल्लाह हमारे अपने मदरसे के एक कारकुन बिरादर दानिश नमाज जमात के हद से ज्यादा शौकीन, लेकिन क्या, एक दफा नमाज जमात के लिए इसी तरह से जा रहे थे, इंतहा से ज्यादा पाबंद, और उनका एक्सीडेंट हुआ और मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और मिनी बस उनकी जो है वो टांग के ऊपर चढ़ गई, तो उस वक्त जो उनकी उस टांग की हालत हुई थी, कमजोर खवातीन तो वो तस्वीर ना देखें जब दिखाने वाला हूं मैं, लेकिन ये कि उसके बावजूद भी वो, क्योंकि बावजूद थे, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि वजू के टूटने से पहले हो सकता है मुझे बेहोश कर दें लोग, हो सकता है कोई और वजह हो, उसी हालत में उन्होंने किस तरीके से नमाज पढ़ी, क्योंकि नमाज की अहमियत का एहसास है, पूरी इनकी जो वो है, यानी पूरी समझने के लिहाज से बाद में उनकी उंगलियां जो जख्मी शुदा हालत में थी काटनी भी पड़ गईं, और ये उनकी बाकायदा ओरिजिनल तस्वीर है। और जिस जो उस वक्त जो तकलीफ थी वो तो नाकाबिले बयान, कोई इंजेक्शन भी उनके ऊपर असर नहीं कर रहा था, लेकिन उसी हालत में उन्होंने सारी नमाजें पढ़ी हैं। और उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, वो चीज़ें काट के उंगलियां निकाल भी दी गई, अब सिर्फ दो उंगलियां हैं। हम अक्सर शरारत में और उनसे वो कहते हैं कि आप असल में विक्ट्री का निशान ये है आपका, जो आपने आपका अंगूठे अपने पाँव के ऊपर जो है वो बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखिए क्या हैं, ये इसी वजह से ये सब बातें जो है आपकी खिदमत में बयान की जा रही हैं कि ये अफराद जिनको नमाजों की अहमियत का एहसास है, क़यामत के दिन वाकईतन पता चलेगा कि जो है हम ज़रा सा किसी को सफ़र दरपेश होता है, सफ़र में सोचते हैं कौन नमाज पढ़े, नमाजें कज़ा होती हैं। ट्रेनों के सफ़र में, जहाज़ों के सफ़र में, तो हमने मुकद्दस तरीन सफ़रों के अंदर पूरे पूरे जहाज़ को जो हज से वापस आ रहे होते हैं, ज़ियारत से वापस आ रहे होते हैं, नमाजें कज़ा करते देखा है। काम के एतबार से बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जॉब पे कर हैं और जब घर वापस जाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, वहाँ कहाँ हम नमाज पढ़ें। जिस जगह पे भी अफराद इस तरह के होते हैं, हत्ता कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अतराफ में जो है वही लोग नज़र आ रहे हैं जो काफिर हैं, लेकिन कोई इसमें घबराने और शर्माने की बात नहीं होती, बल्कि वो अप्रिशिएट करते हैं, वो लोग उनके निगाह में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर नमाज का वक्त आ जाए तो उस मौके पर किसी भी सूरत नमाज को फरामोश न किया जाए। दुकान वाले, बहुत सी जो काबिले तारीफ बातें हैं, वाकई खुद इमाम खुमैनी ने बड़ी तारीफ की सऊदी अरब की, उस लिहाज से कि वहाँ पर जब नमाज का वक्त आता है तो उस मौके पर सब लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो साहिबान ईमान को भी इसी अंदाज से मुतवज्जे होना चाहिए नमाजों को उनके अव्वल औकात में। किसी भी तरह का मौसम हो, जो वाकई नमाजों की अहमियत को समझते हैं, चाहे बर्फबारी हो रही उसी में ही नमाज पढ़ रहे हैं, हद तक नमाज जमात तक कायम कर रहे हैं, किसी और जगह पे हैं, बहरी जहाज पे हैं, किसी भी जगह सफर में हैं, तब भी नमाजों को फरामोश नहीं कर रहे। हत्ता कि बहुत सी ईरान में तो बहुत से दूल्हा जा रहे हैं बारात लेके और नमाज का टाइम हो गया, फौरन जा नमाज बिछाई और नमाज पढ़ी। तो ये सब चीजें देखिए एक काम करने के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि इंसान देखिए जिस वजह से आप अपने कारोबार की वजह से, अपनी मुलाजमत की वजह से आप नमाजों को अगर तर्क कर रहे हैं या उनको टाल रहे हैं या अव्वल वक्त में नहीं पढ़ रहे या कजा करके पढ़ रहे हैं, तो देखिए नमाजें खुद आपको अपनी तमाम चीजों में आसानियां मुहैया करती है, यह आपकी हिफाजत करती है। बाकायदा अखलाकियात की किताबों के अंदर बुजुर्गों के हालात लिखे हुए हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बल्कि वाकई लिखा हुआ एक बुजुर्ग का, कि रात को मशगूल इबादत थे और मनाजात वगैरह के अंदर कोई होश नहीं था, इतना परवरदिगार की डूबे हुए थे नमाजों में, यहां तक कि चोर घर में दाखिल हुआ और सारा सामान लेकर जितनी कीमती चीजें थीं दरवाजे से बाहर निकलना चाहा तो देखा कि एकदम से वो दरवाजा बंद हो गया। फिर भागा भागा दूसरे दरवाजे के पास गया, दरवाजा खोला हुआ था, जैसे चोर गया दरवाजा बंद हो गया। फिर भागा तीसरे जगह पे, दरवाजा जहां से उसको खुला हुआ कोई राहदारी नजर आई, भागा, लेकिन वो जगह भी बंद हो गई। यहां तक के बेचारा थक हार के बैठ गया और खुद उस जो बाद में तायब हो गया था चोर, उसने कहा कि हातिफ़ गैबी की एक आवाज आई थी कि ऐ शख्स, अगर दोस्त अपने महबूब परवरदिगार की याद में मशगूल है तो क्या हुआ, उसका महबूब तो होशियार है परवरदिगार आलम। ये अगर जिक्र इलाही में मशगूल और मस्त हो गया है तो उसका खुदा तो जाग रहा है इसकी हिफाजत के लिए। तो बहरहाल ये चीजें आपकी हिफाजत करती हैं, आपको आसानियां मुहैया करती हैं। अगर आप कारोबार और मुलाजमत में इन चीजों का ख्याल करेंगे तो उसके अंदर मजीद बरकत बढ़ेगी, ना कि इन चीजों को टालने की वजह से रिस्क में कमी भी आती है और बरकत भी रिस्क से दूर हो जाती है। तो बहरहाल देखिए ये नमाज हिफाजत करती है। नमाज को उलमा कहते हैं कि एक जिंदा चीज है, जिंदा। आप इसको सिर्फ चंद अल्फाज का और कुछ उठक बैठक का मजमुआ ना समझें, इसकी एक जिंदा शक्ल है। ये नमाज खुश भी होती है, ये नमाज नाराज भी होती है, ये नमाज रूठ भी जाती है। बाकायदा जो एक किताब है दाइमुल इस्लाम, दाइमुल इस्लाम, उसके अंदर एक हदीस नकल की गई हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को, कि जब भी तुम पर नमाज के लिए सुस्ती तारी हो, इमाम फरमाते हैं, तो जितनी भी जल्द हो सके सुस्ती को बरतरफ कर दो, बरतरफ कर दो और फौरन नमाज की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि अगर तुमने इससे मुंह मोड़ लिया तो ये नमाज भी तुमसे मुंह मोड़ लेगी, ये जिंदा है, ये तुमसे मुंह मोड़ लेगी, इमाम फरमा रहे, तुम पर तवज्जो नहीं देगी। और अगर तुमने नमाज से उस वक्त दूरी इख्तियार कर ली तो परवरदिगार भी तुमसे दूरी इख्तियार कर लेगा, ये नमाज जिंदा है। मैंने कहा ना ये नाराज भी होती, हद तक नमाज रूठती भी है, ये बद्दुआएं भी देती है, ये दोस्त भी है, ये महबूब भी बन जाती है। इसका इसको तो बाद में आखरत में इंसान को जाकर पता चलेगा कि इसकी जब एक मुजस्सम शक्ल बन के आएगी, ये इतनी बाज़ औक़ात नाराज हो जाती कि आपको कुफर और शिर्क से भी करीब कर देती। वाकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिक ना बनो, मुशरिकीन में से ना हो जाना। और पैगंबर तो ये बात भी फरमाते थे कि जो शख्स भी आमदन नमाज को तर्क करता है वो काफिर हो जाता है, और बहुत सी रिवायात में तो कुफर और ईमान के दरमियान जो हद फासिल है वो नमाजी को करार दिया गया। तो अगर ये नमाज आप पर मेहरबान हो गई और आपने इसका इकराम कर लिया तो फिर दुनिया और आखरत में नमाज हर जगह खुद आपका ख्याल करेगी। देखिए हम क्या हैं कि अपने गुनाहों से हम बहुत घबराते हैं। कहा जाता है, ना मालूम हदीस है या मुहावरा है, कि अगर तुम्हारी पेशानी गुनाहों से सिया हो गई है ना तो उसको सिजदे के निशानात से छुपा दो। गुनाहों किससे तारीख हुई है ना पेशानी, इसको सिजदे की तारीखी जो पेशानी के ऊपर एक सिया निशान आता है इसके अंदर छुपा दो इसको। हर मुश्किल मौके पर यह नमाज आपकी मदद करेगी। खुद हुज़ैफ़ा यमानी बात बयान फरमाते हैं कि जब भी पैगंबर इस्लाम को कोई मुश्किल दरपेश होती थी फौरन नमाज में मशगूल हो जाते थे और उसके बाद पैगंबर की वो मुश्किल बरतरफ भी हो जाती थी। वो जो आप कितनी सुनती हैं हजरत यूनुस के मुताल्लिक, हजरत यूनुस मछली के पेट में चले गए थे, यकीनन वेल मछली थी कि जिसके पेट में गए थे। हजरत यूनुस की जो मुश्किल थी वो किस तरह से हल हुई थी, कुरान ने देखिए सूरह साफ़ात में बाकायदा ये बात कही है कि फलाउला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिहि इला यौमि युबअथून। अगर यूनुस तस्बीह करने वाले ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते, कयामत तक। अच्छा, अब यहां तफसीर मजमूल बयान की जो सातवीं जिल्द है उसमें तस्बीह हजरत यूनुस के ऊपर एक बहस हुई है कि हजरत यूनुस की कौन सी तस्बीह थी वो कि जिसकी वजह से हजरत यूनुस को मछली के पेट से रिहाई मिली थी। तो उसके अंदर ये बात बयान हुई है कि यहां पर यूनुस की तस्बीह से मुराद यूनुस का नमाज गुजार होना है, नमाज गुजार होना, यानी हजरत यूनुस जो नमाजें पढ़ते थे वो इस बात का सबब बनी थी कि वो मछली के पेट से बाहर आ गए, उनको रंजो गम से इस वजह से निजात मिली। और बाकायदा कशफुल इसरार के अंदर तो ये बात भी कि सबसे पहली नमाज असर जिसने पढ़ी थी उस असर के वक्त वो हजरत यूनुस है, कि जब वो मछली के पेट से बाहर आए थे तो वो असर का वक्त फजीलत था। यूनुस ने चार तारीखियों से, उलमा फरमाते हैं, खुद यूनुस का कोट करते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको चार तारीखियों से निजात मिली थी। एक तो तरके औला की तारीखी थी, एक तफसील उसकी अलग है कि हजरत यूनुस से जो तरके औला हुआ था उसके नतीजे में मछली के पेट में गए थे, जिसकी तफसील का भी मौका नहीं, लेकिन उसमें एक जुल्मत और तारीकी तो थी। दूसरी थी रात की तारीकी जब मछली के पेट में गए। तीसरी तारीकी थी गहरे समंदर की तारीकी जहां वेल मछली उनको लेकर गई थी जिस जगह पे वो थी, और शिकमे माही वो मछली के पेट की तारीकी। ये चार तारीकियां थी। इन चारों मुसीबतों से छुटकारे के शुक्राने के तौर पर यूनुस ने वक्त असर चार रकत नमाज पढ़ी थी। उलमा फरमाते हैं कि इस दास्तान यूनुस में भी मोमिन बंदों की राह में जो चार तारीकियां पाई जाती उसमें खुद मोमिनीन के लिए बहुत सारी इबरतें, कि हजरत यूनुस की इस तरह से पैरवी में जो ये चार रकत नमाज पढ़ेगा तो वो भी चार किस्म की तारीकियां जो हमारे पेशे नजर होती हैं, ठीक है हम मछली के पेट में नहीं गए, हम गहरे समंदर के अंदर खुदा ना खास्ता मौजूद नहीं है, लेकिन चार तारीकियां हमारे भी दामनगीर हैं। उनमें एक है गुनाहों की तारीकी, दूसरी है कब्र की तारीकी जो कि जिससे आगे चलकर वास्ता पड़ेगा, तीसरा है कयामत के दिन की तारीकी जिसकी बड़ी तफसील है कि कोई किसी शख्स को अपने इतनी भी रोशनी नहीं होगी कि अपने पांव की तरफ देख सके और उसकी एक अलग तफसील है, और दोजख की तारीकी। लोग सोचते हैं कि दोजख बड़ी रोशन होगी, नहीं, दोजख में तारीकी का भी एक अजाब है। कयामत में लोग दुआइयां देंगे, परवरदिगार इतनी तारीकी इसको बरतरफ कर, सख्त वहशतनाक तारीकी होगी। तो जो शख्स भी इन ये जो चार रकत नमाज पढ़ता है उससे एक एक तारीकी उसकी खत्म होती चली जाती। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है अगर कोई शख्स नमाज को नहीं पढ़ रहा है, कोई शख्स वक्त फजीलत में उस चीज को अदा नहीं कर रहा है नमाज को, और खुद ये नमाज असर जिसका भी तस्करा हो रहा था तो खुद भी बहुत ही अजीब गरीब जो है ये नमाज है। इस नमाज को फकत तर्क करने की वजह से इंसान इतने बड़े बड़े गुनाहों में मुबतला और मुसीबतों में मुबतला हो जाता है जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं। वो कितने आपसे जो सीनियर क्लासेस को एक दफा मैं वाकया सुना भी चुका हूं कि एक औरत बहुत फरियादे करती हुई पैगंबर इस्लाम के पास आई और कहा कि या रसूलल्लाह साहब से कहें कि बाहर चले जाएं, मुझे आपसे कुछ अकेले में कुछ बात करना। तो सारे असहाब जो है उठकर बाहर चले गए, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। पैगंबर ने कहा रहमत खुदा तेरी गुनाह से बहुत बड़ी। कहा कि या रसूलल्लाह मैं शोहरदार औरत हूं, एक फेले हराम की मुर्तकिब हुई, बच्चे को मैंने जाया किया, उसको उस बच्चे को मैंने जलाया, जलाने के बाद उसको सिरके में मिलाया और सिरके में घोल कर मिलाकर मुसलमानों को बेच भी दिया खाने पीने के लिए, लोगों को फरोख्त कर दिया। रसूल बहुत मुतफक्किर हो गए सुनकर, और पहले तो उसकी सजा बयान की पैगंबर ने, और फिर फरमाया क्या तू ये जानना चाहती है कि कौन सी चीज इस बात का बाइस बनी कि तू इस गुनाह की मुसीबत के अंदर मुब्तला हुई। मैं गुमान करता हूं कि तू नमाज असर नहीं पढ़ती थी, यानी इस नमाज को तर्क करने की वजह से। मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे अफराद माशरे के अंदर नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, नहीं पढ़ते नमाज, कहते हैं कजा वजा करके हम घर पे आकर रात के वक्त एक साथ पूरे दिन की नमाजें पढ़ लेंगे। और इतना आम सा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा फैला हुआ यह मसला है जो माशरे के अंदर हमको नजर आता है। तो मैं गुमान करता हूं कि तू नमाज असर नहीं पढ़ती थी जब भी इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर मुबतला हो गई। तो ये तो था तर्क नमाज असर का मसला। मैं तो अभी सिर्फ नमाज असर की बात कर रहा हूं, और नमाजों की भी इसी तरह से उनको छोड़ने के क्या क्या नुकसान आते। इस नमाज असर को देर से पढ़ने का भी इतना ज्यादा नुकसान बयान किया गया कि कजा तो छोड़िए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको देर से पढ़ेंगी, जैसे अक्सर होता है कि जनाब बिल्कुल गुरूब से करीब जो है लोग 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले नमाज असर जोर असर पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, वो ठीक है वक्त के अंदर नमाज पढ़ने अभी कजा नहीं हुई है, लेकिन शेख सदूक ने इकाबुल अमाल के अंदर नमाजों को देर से पढ़ने का एक नुकसान जिक्र किया, खासतौर पर नमाज असर को देर से पढ़ने का, कि अगर ये अफराद जो कि नमाजों को ताखिर से पढ़ते हैं खासतौर पर नमाज असर को, अगर ये जन्नत में चले भी गए तब भी हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अगर जन्नत में चले भी गए तो इमाम फरमाते हैं काला मौतूरन अहलहू व मालहू, ना इनके पास इनके अहलो अयाल होंगे और ना ही इनका कोई घर होगा, बल्कि ये जन्नत में दूसरे जन्नतियों के घर मेहमान रहेंगे और उनसे मांग मांग कर खाया करेंगे। ये नमाजों को ताखिर से पढ़ने वाला या तज़य्यफ़ु आलाहा लैसा लहा फीहा मंज़िलुन, इमाम फरमाते हैं कि ये दूसरों के घर में मेहमान, इनका अपना कोई घर नहीं होगा कि दूसरे जन्नतियों के मेहमान के तौर पर रहेंगे और वहां मांग मांग कर खाएंगे, और इनके अहलो अयाल भी इनके पास नहीं होंगे, वरना कयामत में और जन्नत में अपने अहलो अयाल के साथ लोगों को जमा कर दिया जाएगा। तो बहरहाल जबकि नमाजों की पाबंदी करने वाले जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं उनके मुतालिक ये है कि वो जन्नत में बहुत बाइज्जत तरीके से रहेंगे। उलायका फिर जन्नातिम मुकरमून, वो लोग जन्नत में इंतहाई बाइज्जत तरीके से रहेंगे। वजह इसकी है कि उन्होंने अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर नमाजों को वो इज्जत दी है, जिसकी वजह से अब जन्नत में वो उनको इज्जत दी जाएगी। जबकि आपने देखा हो जो दूसरों के घर मेहमान ठहरा हुआ है और मांग मांग कर खा रहा है, उसकी इज्जत में थोड़ी कमी वाकई हो गई। जन्नत में तो वो भी है, लेकिन जो नमाजों की हिफाजत करते हैं उनके लिए कहा कि वो जन्नत में बाइज्जत तरीके, जब जन्नत में आ गए तो वो तो बाइज्जत खुद ब खुद ही हो गया। ये मुकरमून कहने की क्या जरूरत, इसमें लफ्ज को कहने की क्या जरूरत थी परवरदिगार। इस वजह से कि ये तमाम अफराद जिन्होंने इस दुनिया में नमाज की ऐसा इज्जत और इकराम किया, वे इस बात के मुस्तहिक होंगे कि इनके साथ उतना ही इज्जत आमे सलूक जन्नत में भी किया जाए। तो और ये तो छोड़िए, जो बिल्कुल छोड़ बैठे हैं नमाजों को, उनके लिए इतने दर्दनाक अजाब बताए गए कि बाकायदा पैगंबर इस्लाम ने जो मेराज के सफर में जो गुनाहगारों की हालत देखी थी, जो बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 100 के अंदर नकल हुई है, कि उनके सरों को पत्थरों से टकराया जाएगा। और पत्थरों से टकराया जा रहा था जब पैगंबर इस्लाम सफर मेराज पर गए थे, जो अजाब देखे थे। पैगंबर ने जिब्रील से पूछा था कि जिब्रील, किस बात, किस जुर्म की सजा इन लोगों को दी जा रही। उन्होंने कहा ये वो लोग थे जो अपनी नमाजों को अपने सर पर बोझ समझते थे। यानी अपने अल्फाज में कहें कि ये सर जो सुबह के वक्त तकिए से नहीं उठते थे, अब ये इस बात के ज्यादा सजावार हैं कि पत्थरों से कुचले जाएं। पत्थर मार मार के इनको मुसलसल उनको ये अजाब दिया जाएगा कि पत्थर उनके सरों पर मारे जाएंगे। और बाकायदा तफसीर मिन्हाजुस सादिकीन के जहन्नुम की गवादी है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा आग है, बहुत ज्यादा आग, और उसका अजाब भी बेइंतहा सख्त है। उसमें जिसको गई कहा जाता है, उस इतनी सख्त आग है उसकी कि उसमें बेनमाजी अफराद को डाला जाएगा। और सिर्फ डाला ही नहीं जाएगा, बल्कि ऐसे मुकाम पर बेनमाजियों को रखा जाएगा कि जो कि फिरौन और हामान का मुकाम है। फिरौन के साथ इन बेनमाजियों को रखा जाएगा। ये खुद पैगंबर इस्लाम की हदीस है, जिसमें पैगंबर ने फरमाया कि उसको फिरौन और हामान के साथ रखा जाएगा। तो कितना, आप खुद सोचिए कि कितना खतरनाक ये मामला है, कि जिसको समझने की जरूरत है। और ये इतनी अहम चीज है, इतनी अहम तरीन चीज है, कि जिस वक्त हमारे इमाम जमाना अलैहिस्सलाम जिस वक्त जहूर करेंगे, और उसके बाद फिर वो मौका भी आएगा कि हजरत ईसा आसमान से नाजिल होंगे, तो उस वक्त जिस मौके पर हजरत ईसा आएंगे, जिस मौके पर हजरत ईसा आएंगे आसमान से, उस वक्त अजान दी जा चुकी होगी, नमाज जमात कायम हो रही होगी, और इमाम जमाना अलैहिस्सलाम नमाज जमात की इमामत करने वाले होंगे। उस वक्त हजरत ईसा वक्त नमाज आसमान से नजूल करेंगे, तो इमाम जमाना उनसे कहेंगे कि आप आगे बढ़िए नबी खुदा, आप जमात पढ़ाएं। तो हजरत ईसा कहेंगे कि नहीं, नमाज की जो इमामत है वो मुझसे ज्यादा आप इस बात के हकदार हैं कि आप पढ़ाएं, और आप ही इस जमात की इमामत का फरीजा अदा करें। और फिर हजरत ईसा इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो देखिए, वो वाला वाकया भी हजरत ईसा का, वो नमाज ही से मुताल्लिक है, कि जिस वक्त नाजिल होंगे और अकामत कही जा चुकी होगी, अजान कही जा चुकी होगी और अकामत हो रही, उस वक्त उनका आसमान से नुजूल होगा। अच्छा, वो जो हदीस आप बहुत ज्यादा सुनती हैं, अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। देखिए, पैगंबर इस्लाम की मेराज तो सब उससे वाकिफ है, और उलमा ये फरमाते हैं कि बहरहाल पैगंबर की मेराज तो उनकी बड़ी खसूसियत है, और इस खसूसियत में उनके साथ कोई शरीक भी नहीं। लेकिन दीगर अंबिया को भी मेराज मिली है, जिसकी नौयत और कैफियत अलग अलग थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अदम से वजूद में आए और फिर जन्नत में उनको अपनी जौजा के साथ ठहराया गया, जो सूरह आराफ की आयात के अंदर आया है, तो ये खुद हजरत आदम की मेराज थी। आदम से वजूद में आना और उसके बाद अपनी जौजा के साथ जन्नत में उनका कयाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्तों के परों पर बाकायदा सवार हुए और उसके बाद जन्नत और आसमानों की सैर को गए, ये हजरत इदरीस की मेराज थी, हजरत इदरीस की। इसी तरह हजरत नूह की, कि खुदा के हुक्म से राह खुदा में कश्ती में सवार होकर पूरी दुनिया का सफर हजरत नूह ने किया था, और उसके बाद फिर उनको उनकी किश्ती को करार आया था। तो ये हजरत नूह की मेराज थी। हजरत इब्राहिम को जब मंजिनीक में डालकर उसके बाद आग के अंदर फेंका गया और फिर आग जो है वो सलामती हो गई और ठंडी हो गई, हजरत इब्राहिम के लिए ये हजरत इब्राहिम की मेराज थी। इसी तरीके से हजरत इस्माइल की थी कि खंजर उनके गले पर चला और उसके बाद जन्नत से मेंढा आया और हजरत इस्माइल ज़ेबा होने से बच गए और वफादैना हो बेजिबिन अजीम उसका मज़दाक बन गए। ये हजरत इस्माइल की मेराज थी। और इसी तरीके से हजरत मूसा जब कोहे तूर पर गए और वहां कोहे तूर पर परवरदिगार आलम का जो शीरी कलाम है उसको सुनकर मस्त हो गए, तो वो कलाम सुनकर मस्त हो जाना वो हजरत मूसा की मेराज थी। और खुद पैगंबर इस्लाम तो जब सफर पे तशरीफ ले गए थे, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, और काबा कौसैने और आओ अदना की जो है मंजिल के ऊपर पहुंच गए थे, तो वो पैगंबर इस्लाम की मेराज थी। इसी तरीके से बंदे मोमिन की भी एक मेराज है जिसका नाम नमाज है, नमाज। अच्छा, अब इमाम खुमैनी एक जुमला बहुत बेहतरीन निशात फरमाते थे, कहते थे कि नमाजों में 1,24,000 अंबिया और आइम्मा उनकी नमाजों का इरफान वो आपकी नमाज में भी आ सकता है। अगर आप अव्वल वक्त में अगर नमाजें पढ़ें तो आप उस इरफान के सिलसिले से मुत्तसिल हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से 1,24,000 अंबिया नमाजें पढ़ते रहें और पैगंबर इस्लाम और आइमा अथार नमाज पढ़ते रहें, तो जिस वक्त आप नमाज पढ़ती हैं ना, जिस तरीके से देखिए जिस जगह ढलान होती है पानी बहता हो वहीं पर आ जाता है। तो कह रहे हैं कि आप अंबिया और आइमा के इरफान के साथ नमाजों के औकात में अपने आप को मुंसलिक कर लेते हैं और उसी वक्त आपको भी मेराज मिलती है, जब भी मोमिन की मेराज कहा गया है इसको। तो देखिए जमात की नमाज का भी यही फलसफा बयान किया गया कि इंसान जिस वक्त नमाज जमात पढ़ रहा होता है, तो देखिए अकेला और फुरादा इंसान नमाज पढ़ता है तो खुशू व खुजू भी कम होता है, शराइत भी कम होती हैं, तवज्जो भी उसकी नहीं होती है। लेकिन अगर नमाज जमात पढ़ता है ये सब चीजें मफकूद भी हो जाए तब भी उस जमात की नमाज की वजह से तमाम कमियां पूरी हो जाती। ये आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी है कि जो नमाज जमात पढ़ा रहे हैं, जो आपके सामने तस्वीर, कि खुद कब्रिस्तान के अंदर जाते थे और वहां जाकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लिया करते थे। नजफ का जो वादी उस्सलाम कब्रिस्तान है वहां, तो जमात देखिए एक आदमी की भी अगर जमात में नमाज कबूल हो रही है तो उसकी बरकत से तमाम नमाजियों की नमाज जो है वो कबूल हो जाती है। इस वजह से जमात का बहुत सवाब और फायदा है। और जो भी शख्स अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है उसकी तो यकीनी बात है कि उसकी नमाज तो जरूर कबूल होनी है। वजह इसकी उलमा ये बयान करते हैं कि देखिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ये तो लाजमी अव्वल वक्त ही में नमाज पढ़ते हैं और इनकी नमाज जब आसमानों में अव्वल वक्त नमाजें सब एक साथ पहुंचती हैं और उनमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नमाज भी होती जिसे लाजमी कबूल होना होता है, तो उनकी नमाज की कबूलियत की बरकत और उनके सदक़े में उस मौके पर जितनी नमाजें साथ गई होती हैं उन सबकी भी नमाजें कबूल हो जाती। अच्छा, ये जो नमाज मोमिन की मेराज है, ये जो हदीस है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आगा मोहसिन किराती ने इसकी काफी अच्छी तशरीह की है और इसके अलावा आगा हुसैन देलमी ने इस हदीस की बहुत अच्छी तशरीह की है, जो दोनों मिला के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो नमाज मोमिन की मेराज है तो नमाज जिस तरीके से मोमिन को एक उरूज और बुलंदी की तरफ लेके जाती है उसकी मिसाल जहाज से दी जा सकती है, जहाज से। और कहा कि देखिए जहाज भी हमारे जिस्म को बुलंदी और उलू की तरफ ले जाता है। ये फरमाते हैं कि देखिए दुनिया में इंसान की जो परवाज का वसीला है हमारे जिस्म की परवाज का वो जहाज है, और नमाज का मकसद भी कुर्बे इलाही की फजा में परवाज करना है। नमाज आपको कुर्ब इलाही की फजा में परवास करवाती है और जहाज आपके जिस्म को परवास करवाता है। और देखिए वो फरमाते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है जिससे आपको नमाज मोमिन की मेराज समझने में आसानी होगी। जहाज की मिसाल से बात समझाई। देखिए जहाज जब बनकर तैयार हो जाता है तो अब इसका काम क्या है, अब इसको उड़ना चाहिए, अब इसको वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए अपने एंकर में, इसको उड़ना चाहिए वहां से। अब ये तैयार हो गया है, अब ये काम करने के काबिल हो गया है। इसी तरह फरमाते हैं कि जब मोमिन भी बालिग हो जाए या कोई लड़की बालिगा हो जाए तो अब इसे भी कुर्बे इलाही के हुसूल की कोशिश में अपनी मेराज को पाना चाहिए और उड़ना चाहिए, फिजाए कुर्बे इलाही में इसको भी परवास करनी चाहिए। वहां पर इस बात की बहुत कि बहुत बच्चों को अव्वल वक्त बिल्कुल बुलूक के इब्तदाई जमाने से बच्चों को इस बात की आदत डालनी चाहिए। अब देखिए कि रहबर मौसम कितनी मसरूफियात हैं, लेकिन छोटी बच्चियां जो करीबल बलूक हैं या बालिग हो चुकी हैं उनकी नमाज जमात की इमामत कर रहे हैं, वहां पर इस तरह से चीजों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। अच्छा, इसी तरह से उलमा एक मिसाल भी देते हैं कि जिस वक्त देखिए जहाज जब परवास करना चाहता है ना तो उसको साफ सुथरा ताकतवर पेट्रोल चाहिए होता है। अगर आप मोटरसाइकिल वाला जो पेट्रोल जहाज के टंकी के अंदर डाल देंगे कभी परवास ही नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से जो नमाज गुजार है इसको भी अगर कुर्ब इलाही की फिजा के अंदर परवास करना है इसकी रूह को, क्योंकि नमाज मेराज मोमिन है, तो उलमा फरमाते हैं इसको भी जो पेट्रोल यानी उसकी गिजा जो है वो पाक साफ और हलाल होनी चाहिए, वरना कभी ये कुर्ब इलाही की फिजा में परवास के काबिल नहीं हो सकेगा। जैसे हमने मिसाल दी कि मोटरसाइकिल का पेट्रोल से कभी भी जहाज नहीं उड़ सकता, जब वो उड़ेगा ही नहीं तो बुलंद कहां से होगा। अपनी गिजा को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। फिर फरमाते हैं कि जहाज के लिए रनवे का स्मूथ होना बहुत जरूरी, जिसके वरना उसमें घड़े हों गड्ढे हों कि तो उसमें जहाज तो कभी भी उसके ऊपर दौड़ ही नहीं सकेगा। तो फरमाते हैं कि इसी तरीके से नमाज की जगह भी हलाल पाक और मुबाह होनी चाहिए, गसबी जगह नहीं होनी चाहिए, नजिस जगह नहीं होनी चाहिए, वरना कभी भी अपनी मेराज को पा नहीं सकेगी। देखिए सिमिलैरिटीज है। इसी तरह से फरमाते हैं कि पायलट जो होता है वो तमाम जहाज के फनी मसाइल से आगाह होता है, क्या करना है तमाम चीजें उस टेक्निकल जो चीजें होती हैं उससे आगाह होता है। मोमिन को भी नमाज के तमाम फिकही और इखलाकी और शरई मसाइल से आगाह होना चाहिए, तभी वो उसका वो जहाज उसकी वो मेराज जो है वो हो सकेगी, वो परवास कर सकेगा उसका जहाज आलम मानवी में। फिर फरमाते हैं एक और मिसाल के जरिए कि पायलट हमेशा कंट्रोल टावर जो होता है उसके अहकाम का पाबंद होता है, कंट्रोल टावर से अहकाम लेता है। इसी तरह नमाजी को भी मुश्तहिद आलम के फतवों के अहकाम का पाबंद होना चाहिए, वो कंट्रोल टावर है, अपनी तरफ से नमाजों में कोई इजाफा नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमें कोई तशहुद पसंद आ रहा है तो हम उसका इजाफा कर दें, कोई चीज पसंद नहीं आ रही उसको निकाल दें, नहीं, जो भी कंट्रोल टावर के अहकाम हैं उससे सरे मुंह इख्तलाफ करना बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है, नमाजें उससे बातिल हो सकती हैं आपकी। आपको ये देखना पड़ेगा कि लोगों की चीखो पुकार या किसी भी तरह तौर पे इनहराफी अफकार को फैलाने वाले कंट्रोल टावर के अलावा किसी और जगह से इंटरसेप्ट करके आपको अहकाम ना देना शुरू हो जाए। अच्छा, इसी तरह से देखिए ये भी मिसाल दी जाती है कि जितनी उम्दा एयरलाइन होगी परवाज उतनी अच्छी होगी, और जितनी खराब एयरलाइन होगी, नाम मैं नहीं लूंगा वरना फौरन आप वैसे पहचान गई होंगी, तो उतनी परवाज उसकी अमूमन खराब रहेगी, इमरजेंसी लैंडिंग्स करना पड़ेंगी उसके लिए। जितनी उम्दा परवाज चाहिए उतनी उम्दा एयरलाइन का इंतखाब किया जाता है। तो मोमिन भी जितना मुत्तकी और परहेजगार होगा उतना ही उसकी नमाज की मेराज बुलंदी के ऊपर उतनी उसकी नमाज जा सकेगी, यानी जितना अच्छा मोमिन होगा उतनी अच्छी उसकी नमाज उसके मुताबिक होगी। फाजिर को फाजिर मोमिन होगा तो नमाज की कैफियत भी बस वैसी ही होगी जो उस एयरलाइन की जो आपके दिमाग में। अच्छा, इसी तरीके से देखिए जहाज जिस वक्त उड़ता है तो टेक ऑफ से पहले कुछ टैक्सी करता है, ऐसा तो नहीं खड़े खड़े जहाज एकदम से हवा में उड़ जाए, यानी जमीन पर दौड़ता है, पहले आहिस्ता आहिस्ता होता है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर यहां तक होता होता एकदम से फजा के अंदर बुलंद हो जाता है। इसी तरीके से नमाज जो मोमिन की मेराज है, पहले मुकद्दमाते नमाज है, पहले उसको वजू करना पड़ता है, नमाज की तैयारी अभी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ, या आयतुल्लाह कोई मरहूम है जो कि वजू कर रहे हैं, और उलमा देखिए इसमें एक चीज और भी है कि बर्तन वगैरह के अंदर वुजू का एक फायदा होता है कि इसमें पानी कम जाया होता है। हम लोग बेसन वगैरह के अंदर खड़े के सामने खड़े होकर जो वुजू कर रहे होते हैं तो मुसलसल पानी बह रहा होता है, मुसलसल पानी बह रहा होता है, तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है। वजू के जब मसाइल बयान हुए थे उस वक्त काफी तफसील से इस बात पे बहस हुई थी। बर्तन में अगर लेकर वजू करते हैं ना तो उससे बहुत सारे मुस्तहबात पे भी अमल हो जाता है और पानी भी कम खर्च होता है। तो अभी मानवी फजा के अंदर परवाज करना, लेकिन फौरन नहीं उड़ जाना कि हम फौरन भागते हुए गए और एकदम से अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर दी, नहीं, उससे पहले वजू है, उससे पहले जो है वो अजान व अकामत है, कुछ मुस्तहब दुआएं हैं, कुछ ठहरा जाता है, कुछ मुस्तहबात के अंदर मशगूल हुआ जाता है। जिस तरीके से जहाज फौरन नहीं उड़ जाता, इसी तरीके से नमाज का भी मसला है। अच्छा देखिए, जिस वक्त जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है और अभी उड़ रहा होता है, उस वक्त उसके इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, बहुत ताकत चाहिए होती कि जब ये उड़ जाता है और फजा के अंदर एक स्मूथ फ्लाइट हो जाती है, फिर उसके इंजन पर इतना जोर नहीं पड़ता। इसी तरह से जिस वक्त आप नमाज शुरू करने वाली होती तो उस वक्त आपको बहुत ताकत लगाना पड़ती, शैतानी वसवास आ रहे होते हैं, शैतान चाहता है कि टाल दो, तर्क कर दो, आखिरी वक्त में पढ़ लेना, ख्वाहिश नफ्स, नींद आ रही है, अभी सुस्ती आ रही है, अभी खाना खाया है, तो काहली हो रही है, लापरवाही हो रही है, इससे अपना पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जिस तरह जहाज को टेक ऑफ करते वक्त ताकत चाहिए होती। लेकिन एक दफा बस आप खड़े हो गए, आपने शैतान को शिकस्त दे दी और नमाज में मशगूल हो गए, अब आसानी के साथ फिर नमाज पढ़ ली जाती, मुसल्ले पर आ गए, बस आपने अच्छा खासा काम कर लिया, अब उसके बाद ज्यादा परेशानी आपको नहीं होती। इधर आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तकबीरतुल इहराम कह के नमाज शुरू की और वहीं आपके लिए सहूलत और आसानी, गोया फ्लाइट स्टेबल हो गई। देखिए फ्लाइट के अंदर हर चीज की बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं और टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है, जो काम पहले करना है उसे बाद में नहीं कर सकते, जो काम बाद में करने हैं उसको पहले नहीं अंजाम दे सकते। इसी तरीके से नमाज भी अगर एक मिनट पहले आप पढ़ लेंगे तब भी नमाज बातिल हो जाएगी, वक्त के बाद कजा होने के बाद पढ़ेंगे तब भी आप गुनाहगार हो जाएंगे। यानी हर चीज जिस तरह से जहाज में कैलकुलेटेड और टाइमिंग्स के साथ होती, इसी तरीके से नमाजों का भी मसला है। और देखिए ये भी उलमा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कामयाब फ्लाइट उसी वक्त कहा जा सकता है किसी फ्लाइट को जब वो सही और सालिम तमाम खतरात से क्रॉस करते हुए सेफली लैंड कर जाए, इसे कहा जाता है कि कामयाब फ्लाइट थी। नमाज भी हमारी उसी वक्त कीमती होगी जब ये किसी भी आफत के बगैर, किसी भूल चूक के बगैर, किसी खुशू खुजू में कमी के बगैर, ये अगर अच्छे तरीके से नमाज आपने अख्तिताम पजीर कर दी है तब ये कहा जाएगा कि आपने सही तौर पर मेराज मोमिन की इस रिवायत के ऊपर अमल करते हुए बुलंदी तक नमाज को लेके गए और फिर इख्तिताम उसका बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से आपने कर दिया, कोई मकरूहात नहीं हुए, कोई मुब्तलात नहीं हुए, गोया फ्लाइट जो थी नमाज की वो सेफली लैंड कर गई। इसी तरीके से देखिए पायलट के लिए जरूरी है, उलमा फरमाते हैं कि कंट्रोल टावर के अहकाम की जुबान से वाकिफ हो। कितनी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन वगैरह के जो प्रोग्राम टीवी के ऊपर आते हैं इसमें कितनी एयर क्रैश ऐसे दिखाए गए हैं कि जो जहाज के पायलट थे वो कंट्रोल टावर की जबान से सही तौर पर वाकिफ नहीं थे, सही वाकिफ नहीं थे, तो उसके नतीजे में वो अहकाम को सही तौर पर समझ नहीं सके और वो उनको नुकसान उठाना पड़ा, जहाज क्रैश हो गए। इसी तरीके से इस नमाज की जो फ्लाइट है इसकी भी एक खास लैंग्वेज है, वो अरबी, सही तलफ्फुज होना चाहिए, सही तजवीद होनी चाहिए, आपको मुख्तलिफ चीजें पता होनी चाहिए, ये नहीं कि नमाज अरबी में और आप उर्दू के अंदर तरीके से उसको पढ़ रही। या जैसे वो था मुस्तफा कमाल अता तुर्क के, जिसने पूरी नमाज को तुर्की में करने की तरकीब की थी, पूरी नमाज बातिल हो जाएगी अगर किसी ने इस अंदाज से इस तरीकेकार को इख्तियार किया। फिर उलमा फरमाते हैं कि देखिए जितना जहाज फिजा के अंदर बुलंद होता जाता है उतनी ही दुनिया उसके सामने छोटी होती चली जाती है। देखो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भी इतनी छोटी छोटी नजर आने लगती है। इसी तरह से कल्ब नमाजी है वो जितना खुदा की तरफ मुतवज्जे होता जाता है दुनिया और अहले दुनिया उसकी निगाह में उतने ही हकीर होते चले जाते हैं। आयतुल्ला जवाद अंसारी हमदानी जिन अपनी नमाजों में खुशू खुजू के अंदर बहुत मशहूर थे, तो जितना खुदा की तरफ मुतवज्जे होगा नमाजी का दिल उतना ही दुनिया उसके निगाह में हकीर हो जाएगी। जिस तरीके से जहाज जितना बुलंद होता है इमारतें और दुनिया उतनी छोटी नजर आती। देखिए पायलट के लिए उलमा ने फरमाया बहुत जरूरी है कि उसकी ट्रेनिंग सही हो, एविएशन के ऐसे इदारों के अंदर सही उन्होंने जो है तालीम हासिल की हो, अच्छे उस्ताद से, अच्छे मौलिम से, अच्छे कॉलेज से उन्होंने पढ़ा हुआ हो तो वो अच्छे पायलट बन सकते हैं। इसी तरीके से जो नमाज गुजार है इसको भी अपने किसी अच्छे उस्ताद से, किसी अच्छे रहनुमा से, किसी अच्छे मदरसे से باقاعدہ نماز کے مسائل کو، اس کے اخلاقیات کو، اس کو قبول کروانے والی چیزوں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، یعنی نمازوں کے بھی اعتبار سے اور دیگر مسائل فقہ کے اعتبار سے کتنا عظیم و شان کام ان کا ہے کہ جس کو رشک آتا ہے دیکھ کے، کہ مسائل نماز کے خاص طور پر کراچی میں، دیگر کچھ اور علماء نے بھی اچھا سلسلے میں کام کیا یقینا، لیکن ان کی خصوصیت کوئی الگ اور نمایاں ہی ہے کہ مسائل فقہ کے اعتبار سے اتنا زیادہ کام ان کا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اسی طرح سے کہ پائلٹ کے لیے دیکھیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کا دماغ، اس کا ذہن بہت الرٹ ہونا چاہیے. وہ غافل ہو جائے، پائلٹ بے ہوش ہو جائے، جہاز سے گر پڑے. تھوڑے دن پہلے پائلٹ صاحب لینڈ کرنے کے بعد پتہ چلا، ابھی شاید لینڈ بھی نہیں ہوئی تھی، کہ کیبن سے باہر نکلے اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. تو اس سے بہت مسائل جو ہے وہ جہاز کے اندر ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پائلٹ ہے وہ بالکل الرٹ اور ہوشیار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ورنہ نقصان ہوگا. بے پرواہ جو نمازی ہیں، جو مسائل نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا کوئی بال تو نہیں نظر آ رہا خواتین میں سے، تو ایک بال بھی نظر آ رہا ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لباس ان کا کس طرح کا ہونا چاہیے، بس جیسا تیسا نماز پڑھنی ہے، چاہے بال نظر آ رہے ہوں، چاہے لباس نامناسب ہو، کوئی مسائل نماز وغیرہ کی پرواہ نہ ہو، ان کی بھی نماز باطل ہو جائے گی. ایسا نہیں، اس کو الرٹ ہونا چاہیے اپنے آپ کو باقاعدہ. جب ہم اگلی کلاس ہوگی اس کے اندر نماز کی تیاری کیسے کریں، اس پہ جب گفتگو ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں گی بہت ساری چیزیں. آپ کو باقاعدہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے حجاب، پردہ، ایک ایک بال کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نماز اس سے خراب ہو جائے. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جہاز کو پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی. ایک پر بھی اگر اس کا خراب ہو جائے تو جہاز جو ہے کریش کر جائے گا، گر جائے گا. اسی طرح معراج، یہ مومن جو ہے نماز، اس کو بھی معنوی فضا کے اندر پرواز کرنے کے لیے اس کے بھی دو پر ضروری ہیں، ایمان اور عمل صالح. ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہے، ایک چیز بھی اگر کم ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب فقط نمازوں کے اندر لگے ہوئے، عمل صالح سے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، کچھ اور چیزوں کے اندر حصہ نہیں لے رہے، بس نمازوں میں نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. ان کی بھی، یہ بھی صحیح طور پر پرواز نہیں کر سکے گی ان کی نماز. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہیں جو عمل صالح میں لگے ہوئے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ گلوکار کا تو میں نے خود ٹی وی پر اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی دیکھیے زلزلہ زدگان کے حوالے سے میں بہت ہمدردی دل میں آئی اور میں بہت چیریٹی کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن واضح طور پر بتا دوں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. یہ ٹی وی پہ کہا انہوں نے، گلوکار نے. تو ان کی بھی نا، یہ بھی کسی معنوی فضا کے قابل نہیں ہے. بھائی وہ کون سی نماز ہے کہ جو کہ حقوق العباد اور دیگر لوگوں سے یا عمل دیگر عمل صالح جو ہے، جو انجام ایمان اور عمل صالح دونوں کی ضرورت پیش آتی، ان میں سے کوئی سی بھی ایک چیز کم ہو جائے، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد، یہ بھی جہاز کے دو پر سمجھے جا سکتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی علماء نے کہا کہ دیکھیے جہازوں سے کیا ہوتا ہے، سفر سمٹ جاتے ہیں، انسان جلد اپنی منزل پر پہنچ جاتا، دنوں کے سفر گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نماز بھی بہت جلد قرب پروردگار کے منزل پر انسان کو لے آتی. ان نمازوں کے ذریعے بہت جلد قرب پروردگار حاصل ہوتا. اور یہ بات بھی مشابہت کے طور پر علماء نے نقل کی کہ دیکھیں جہاز جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنی پرواز اس کی سموتھ ہوتی. جو فوکر طیارے ہوتے ہیں، چھوٹے طیارے ہوتے ہیں، وہ جھٹکے بھی لے رہے ہوتے ہیں، فلائٹ بھی ان کی سموتھ نہیں ہوتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح بہت بڑا جہاز ہو تو اس کی فلائٹ سموتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر نماز جماعت جتنی بڑی ہوگی وہ فوراً قبول بھی ہو جائے گی. خوشو و خضوع یا اس طرح کی کوئی کمی اگر واقع بھی ہوتی ہے جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، تو وہ بھی آپ کی ساری کمپنسیٹ ہو جائے گی. اور بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے جہاز جتنا بڑا ہے اتنی سمجھنے کے لحاظ سے سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے جو ہے وہ اس معراج کو انسان حاصل کر سکتا ہے. اور پرواز میں دیکھیے اگر ایک بھی مہلک غلطی ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، فقط ایک غلطی سے کروڑوں کا جہاز وہ کریش ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کے اندر مثلا آگ لگ جاتی، ایک صرف ایک مہلک غلطی. اسی طریقے سے نمازی بھی اگر کوئی ایک مہلک غلطی کر لے، مثلا ریاکاری کی غلطی، لوگ ایک سیکنڈ کو بھی دل میں خیال اس کے آ گیا کہ میں دنیا دکھاوے کا ایک سیکنڈ کا بھی خیال، وہ پوری اس نماز کو معراج پہ جو گئی ہوئی تھی وہ نماز کا وہ جہاز جو ہے وہ کریش ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی. اور ہزاروں سال کی جو دیکھی شیطان کی عبادت تھی، وہ فقط غرور و تکبر آیا اور پوری ہزاروں سال کی نمازیں اس کی جو ہے وہ باطل ہو گئی، فقط ایک گناہ کے کو انجام دے کر. اور دیکھیے یہ بھی کہا گیا کہ جہاز دیکھیے جب تک رکاوٹوں میں کھڑا رہتا ہے جب تک وہ اڑ نہیں سکتا. پرندے کے پاؤں میں اگر آپ رسی باندھ لیں وہ کہاں سے پرواز کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی مومن ہے اور اس کے پاؤں میں گناہوں کی زنجیر بندھی ہوئی، جو جتنی بھاری زنجیر ہوگی उतना ही वो उड़ान उसकी मुश्किल होगी। तो हमेशा तौबा और इस्तग़फ़ार करके जब ये नमाज़ों को शुरू करने से पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहने की बड़ी ताकीद है, जो आगे नमाजों की तैयारी के ज़िम्न में हम जिक्र करेंगे। तो गुनाहों की जंजीर को पहले छुड़ाइए, तौबा कीजिए और नमाजों की तरफ मशगूल हो जाइए। और देखिए, जितना जहाज हवा में बुलंद होता चला जाएगा उतना आप घर वालों से दूर हो जाएंगी। फिक्र दुनिया, लोग कहते हैं कि जब जहाज के अंदर इंसान बैठते तो ख्वाह कितनी परेशान क्यों ना हो, दुनियावी एतबार से बहुत सारी परेशानियों से उसका दिमाग हट जाता है। इसी तरह से जब नमाज इंसान पढ़ना शुरू करता है और खुशू खुजू से नमाज पढ़ता है तो तमाम मादी फिक्रात से दूर हो जाता है, उतना ही खुदा के वो नजदीक होता चला जाता है। और एक और बहुत अहम बात उलमा बयान फरमाते हैं कि देखिए, जहाज जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही गिरने का खौफ बढ़ता चला जाएगा। मसलन अगर कोई बहुत 5 फुट के फासले पर अगर आप हैं, कहीं देखिए दीवार पे खड़ी हो, आपको गिरने का उतना खौफ नहीं होगा जितना 500 फुट की किसी बिल्डिंग पे आप टांग लटका इस तरह से बैठी हो, गिरने का कितना खौफ होगा आपको। कोई 100 फुट के गहरे कुएं के अंदर आप कोई रस्सी लटकाई जाए और आप नीचे हो और आप रस्सी को खींचते खींचते हुए जो है ऊपर आ रही हो, तो जितना आप किनारे के करीब पहुंचती जाएंगी उतना गिरने का खौफ बढ़ता चला जाएगा। तो उलमा एक बात बयान फरमाते हैं कि इसी बुनियाद पर जो उलमा का खौफ होता है, सालेहीन का खौफ होता है, अंबिया और आइम्मा का खौफ होता है कि धड़क रहे हैं दिल और जर्द चेहरा पड़ा जा रहा है उनका, और अमीरुल मोमिनीन दीवारें मस्जिद कूफा की दीवारें पकड़ पकड़ के जो आ रहे हैं, ये गौम सल्ला मोहम्मद जितनी बुलंदी पर है उतना ही खौफ खुदा बढ़ता चला जा रहा है। ये है मफहूम नमाज मोमिन की मेराज है इस हदीस का। देखिए, मुकामात आलिया जितने, इनकी कोई हद और इंतहा नहीं, क्योंकि कमाल तो फकत परवरदिगार आलम की जात के पास है, हद कमाल उसके पास है। तो कमाल के करीब होने के लिए उलमा की सीरत रही है और अंबिया की और हमारे आइमा की भी, कि एक एक रात में या शबोरोज में मिलाकर हजार हजार रकत नमाज पढ़ते, जिसको फौरन लोग कैलकुलेट करने लगते हैं कि इतनी देर इतना टाइम लगेगा तो ये हो सकेगी नमाज या नहीं हो सकेगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलता है, अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलता है, अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बात मिलती है। और आइम्मा में से हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलती है। कि एक रात में या शब और रोज़ में मिलाकर 1000 रकात नमाज पढ़ा करते थे। अब असल कहते हैं जिन के ईरान की ज्यारतों में, अब असल के मज़ार पर भी गई होंगी उनके रोजे पर, तो 8वें इमाम कैद खाने में थे, तो अब असल जब मिलने के लिए गए तो दारोगा जिंदान ने कहा कि मैं आपको मिलवा तो सकता हूं इमाम से, लेकिन मैं किस वक्त मिलवाऊं, वो कभी ऐसा मौका ही नहीं नजर आता कि जिस वजह से नमाज पे ना हो, मुसल्ले पे ना, हर वक्त नमाजों पे नमाजें पढ़ते रहते। और ये तो आइम्मा की बात थी, पिछली दफा तो मैंने अल्लामा अब्दुल हुसैन अलमीनी का तस्कर आपके सामने किया था कि वो भी किस तरह से मशहद में एक रात के अंदर या शबो रोज में मिलाकर 1000 रकात जो है वो नमाज पढ़ा करते थे। देखिए, नमाजों को इतना पावरफुल होना चाहिए। एक जमाना था जो कि अब नहीं रहा है, शायद इस वजह से भी हमें बहुत सारे जो एहतजाज हम करते हैं ना, हमें उसके लिए बाज़ औक़ात धरने देने की जरूरत पेश आती है, कभी कोई एहतजाज का तरीका अपनाने की जरूरत पेश आती है। पहले जमाने में जब नमाजें इतनी पावरफुल हुआ करती थी तो उलमा हुकूमतों पे दबाव डालने के लिए, अपने मुतालबात मनवाने के लिए, पता है आपको क्या किया करते थे, नमाजें जमात को पढ़ाना मौकूफ कर दिया करते थे, इतनी पावरफुल नमाज थी। हुकूमतों पर इतना दबाव पड़ता था कि क्या है कि फलां नमाज जमात पढ़ाने के लिए आज इस वजह से नहीं आए, कि एहतजाजन नहीं आए, कि फलां कैदियों को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा, जिन बेगुनाहों को, जब तक वो नमाज जमात कायम नहीं होगी। एक नमाज जमात सिर्फ होती थी और इतना दबाव हुकूमत पर पड़ता था कि कैदी छोड़ने पड़ जाते थे। ये आपके सामने जो इस वक्त है बड़ी नादिर और नायाब तस्वीर है मिर्ज़ा शिराजी की, जिनका तंबाकू वाला फतवा था कि उनकी नमाज जमात कायम हो रही है वहाँ पर। अब इतना वक्त नहीं है बहुत सी नई खवातीन को, वो तो कौन सा तंबाकू के खिलाफ जो फतवा दिया था कि किस तरह से तंबाकू के जरिए ईरान में दाखिल होना चाह रहे थे और उन्होंने फतवा दे दिया था कि आज से सब लोगों के लिए तंबाकू का इस्तेमाल करना हराम है। तो इस तरह से अंग्रेजों को ईरान में दाखिले से रोका था अपना वो सियासी फतवा देकर। तो इतना दबाव पड़ता था उन नमाजों की वजह से कि फकत एहतजाजन नमाज जमात पढ़ाना मौकूफ कर दी, हुकूमतों को इतना दबाव पड़ गया। और सिर्फ ये नहीं, आपको बहुत सारी आपकी जो मादी मुश्किलात हैं वो भी बहुत नमाजों के जरिए आप हल कर सकती हैं, बशर्ते नमाज को ऐसा बनाएं भी। जब भी हम ये जो सब चीज़ें आपको बता रहे हैं और मरहलेवार बताते चले जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये सिलसिला निस्बतन चलेगा 12-15 दर्स तक तो कम से कम, और उसमें फिर तरतीबवार होगा। अभी तो ज़रा एक लिहाज से तमहीदी बात चल रही कि पैगम्बर इस्लाम ने एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, अली आज मैं खाने पर आपके घर आऊंगा। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन को तो पता था कि आज घर में खाने को कुछ भी नहीं, मुख्तारे कायनात और मोहताज खुदा के घर खाने को कुछ ना था। देखिए अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है ना बड़ा अच्छा जुमला, कि इससे अच्छी तारीफ कोई नहीं हो सकती, मुख्तारे कायनात लेकिन मोहताज खुदा। तो गुलू और तकसीर दोनों की तमाम इस जुमले के जरिए रख कट जाती, घर खाने को कुछ ना था, लेकिन फिर भी कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका हमारे घर तशरीफ लाना हमारी मजीद इज्जत अफजाई का सबब बनेगा। खैर, पैगंबर से पहले ही घर अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले गए और हजरत जहरा को जाकर सारी बात बताई। ये बात सुनकर हजरत जहरा भी फिक्रमंद हो गई, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। थोड़ी ही देर में पैगंबर इस्लाम ने दक्कुल बाप किया और दरवाजे सैयदा पर आ गए। पैगंबर इस्लाम अंदर आए और हजरत जहरा दूसरे कमरे में मुसल्ले पर दो रकत नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, और सलाम को पढ़ने के बाद चेहरे मुबारक को जमीन पर रखा और कहा कि परवरदिगारा बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हमारे लिए गिजा को मुहैया फरमा जिसे हम तनावुल कर सकें और तेरा शुक्र अदा कर सकें। अभी सजदे से सर बुलंद ही किया था कि नाक में खाने की खुशबू गई और बड़ा सा एक तबक जो खुदा ने बहिश्त से खाना भेजा था जन्नत से, वो देखा कि एक तबक सामने रखा हुआ है उस शहजादी ने उसको उठाया दस्तरखान पर पंजतन ने बैठकर वो बहिश्ती खाना तनावुल फरमाया। आपने देखा इसी नमाज के जरिए रिस्क में अगर किसी के तंगी होती, कोई और मुश्किल और परेशानी पेश आती, हम मुश्किलात और परेशानियों, हमारा तरीक़ेकार आइम्मा और मासूमीन के तरीक़ेकार से बिल्कुल अलग, हम मुसीबतों और मुश्किलात में नमाजों को तर्क करते, परेशानियों में नमाजों को तर्क करते हैं, वहां नमाजें वो बढ़ा दिया करते थे और इसके जरिए अपनी मुश्किलात का तदारुक करते थे। तो नमाज देखिए हर मुश्किल चीज में आपको उससे निकालेगी। और आजकल का जो खासतौर पर पूरा अशोभ दौर है, मोमिनीन का कितना ज्यादा कत्लेआम हो रहा है, क्वेटा में पे दर पे कितने वाकयात आपके सामने हुए हैं मोमिनीन के कत्लेआम के, खुद पारा चनार में मजालिम की कैसी इंतहा हुई है, ये पूरे लाशें नहीं, ये गर्दन कटी हुई मोमिनीन की किस तरह से उनके ऊपर मजालिम की एक इंतहा की गई है, और दीगर वाकयात के साथ साथ कराची में हालिया जो अब्बास टाउन का वाकया है, इसमें यकीनन लोग उलमा की हिदायत पर अपनी हिकमत अमली जो सियासी तौर पर अमली तौर पर जो कर सकते हों वो अंजाम दें, लेकिन इस मौके पर बहुत सारे अफराद सिर्फ और सिर्फ हिकमत अमलियों को सोच रहे हैं और नमाजों और दुआओं से जो है वो गाफिल होते जा रहे हैं। नमाज आपको बेहतरीन नमाज अगर इस अंदाज से पढ़ी जाए, शराइत के साथ पढ़ी जाए, तो हो सकता है किसी एक शख्स की नमाज भी पूरी उम्मत को इस कत्ल गारत करी और दहशतगर्दी के पंजे से आजाद करवा ली, एक शख्स की भी। तो दुआओं से कभी आप दुआओं को फरामोश ना करें। दुआए जोशन सगीर और मुख्तलिफ दुआएं आपने देखा था इससे पहले भी कि इसराइल ने किस तरह से हिजबुल्लाह के ऊपर लबनान के अंदर हमला किया था, तो अपनी तमाम तर सलाहियतों को जिसका वो हमेशा से मुहैया जिसको करती रही है हिजबुल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ उस हिकमत अमली को इख्तियार करने के साथ साथ इसराइल के साथ जो मुकाबला था वो दुआए जोशन सगीर के जरिए किया गया था। और कैसी शिकस्त फाश जो है इसरा, वरना फौजी लिहाज से कितनी बड़ी इसराइल ताकत है उसके मुकाबले में हिजबुल्लाह फौजी लिहाज से कितनी कमतर थी, लेकिन क्या है कि इलाही मदद उस सिलसिले में उन्होंने दुआओं को और नमाजों को इस सिलसिले में अपना मददगार बनाया, और फकत अपनी हिकमत अमली के ऊपर भरोसा नहीं किया बल्कि इलाही मदद को भी शामिल हाल रखा। तो आज भी बाज़ोकात इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आप किसी को ये बताएंगे बात के नाम इस तरह से तुम नमाज पढ़कर दुआ करो, ये फलां चीज़ दुआ पढ़ो हिकमत अमली के साथ साथ, तो अक्सर नौजवान बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमें जो है बस वो सुलाना चाहते हैं, कि आप हमें जो ये करना चाहते हैं कि हम, यानी उसका मकसद ये होता है यानी शायद दिमाग में होगा कि शायद हमारी कुछ अमली इकदाम हैं वो बहुत सुपीरियर हैं नमाजों और दुआओं से, यानी इलाही मदद के बगैर कोई चीज़ कभी इख्तियार नहीं की जा सकती, यानी कभी फ़ायदा आपको उस सिलसिले में नहीं होगा। दोनों चीज़ों को बराबर साथ साथ चलाएं, उलमाए आलम जो मशवरे दें जो गाइडलाइन मुहैया करें उसके मुताबिक भी अमल करना है, और उसके साथ साथ दुआओं को और नमाजों को भी फरामोश नहीं करना है। खुद लैलतुल हरीर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे सिफीन कितनी सख्त रात थी, 1.5 साल सिफीन की जंग चली। अच्छा, पहले जंग दिनों में हुआ करती थी, यहां तक कि जंग को फैसला कुन मरहले तक पहुंचाने के लिए फिर मौला ने हुक्म दिया था कि अब फैसला कुन जंग होगी, अब दिन में भी जंग होगी और रात को भी जंग होगी। इब्ने कौवा नाम का एक मुनाफिक अमीरुल मोमिनीन के पास आया और एक दफा उसने आकर पूछा था कि मौला क्या आपने लैलतुल हरीर में भी नमाज शब को पढ़ा था? अब मौला ने कहा हाँ, मैंने लैलतुल हरीर में भी नमाज शब को तर्क नहीं किया था। कुत्तों के रोने को हरीर कहा जाता है, कुत्तों के रोने की रात, यानी जब हाकिम शाम के लश्करी जो थे वो जख्मी कुत्तों की तरह से उस रात को गिरिया कर रहे थे, इस वजह से उसको लैलतुल हरीर। 70,000 से जायद अफराद उसमें मारे गए थे और खुद अमीरुल मोमिनीन ने आखिरी दिन 550 लोगों को कत्ल किया था। तीरों की बारिश हो रही थी, जब सारे तीर खत्म हो गए तो फिर नेजों को इस्तेमाल करना शुरू किया, जब सारे नेजे भी टूट टूट कर गिर गए फिर तलवारों को इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर गुर्जों को इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी फजा में रिवायात में मिलता है कि इतनी खतरनाक और दहशतनाक वो रात थी कि फजा में सिवाय तलवारों की आवाज के, सर कलम होने की आवाजों के, दांतों के बजने और हड्डियों को टूटने की आवाजों के और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एन उस वक्त इतने दहशत ज़दा माहौल में अमीरुल मोमिनीन अपने खेमे में आए और इस दहशतनाक लम्हात में अपने रब के हुजूर नमाज शब के लिए खड़े हो गए और कयाम और कयामत तक के लिए अपने मानने वालों को नमाज की पाबंदी का दर्स दे गए। और आज हमारी तमाम तर हिम्मतें और आपस में जितने भी बहस तखमीस है वो इसी पर हमारे खर्च होती चली जा रही कि आज़ादारी अफजल है या नमाज अफजल है। यानी ये उस अली के मानने वाले डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक काफिला पिछले दिनों मुझे मालूम चला कि इराक से आया है, तो वो जो ग्रुप लीडर थे कारवान के वो साहब तमाम लोगों से कह रहे थे कि ये नमाजें तो आप पाकिस्तान में भी जाकर पढ़ सकते हैं, नमाजों को छोड़ो या फिर फकत और फकत ज्यारत करो। तो इस बात में बहस हो रही कि आज़ादारी और इमामत या उसूल दीन में से उसूल दीन की अहमियत ज्यादा होती है, नमाज फुरू दीन में गोया से कोई अहमियत ही नहीं। तो हम उनसे ये बात पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अमीरुल मोमिनीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये उसूल दीन में थे या फुरू दीन थे? उसूल दीन थे। जब वो खुद उसूल होकर फुरू के इतने पाबंद थे तो जो आम शख्स उसको कितना ज्यादा पाबंदी अख्तियार करना पड़ेगी। तो भाई ये है असल में इसमें बात है कि देखिए हमें सोचना चाहिए। देखिए ईरान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में उन लोगों की मिसालें, आप भी अभी जैसे आपने लबनान का हिजबुल्ला का सुना कि उन्होंने किस वजह से शिकस्त फाश जो है वो मिली है, उन्होंने कैद खानों के अंदर उन कैदियों ने कैसी नमाजें पढ़ी, उन्होंने उस हालत जंग में मोर्चों के अंदर कैसी नमाजें पढ़ी, और यहां तक कि शदीद बर्फबारी हो रही होती थी उसी जंग के अंदर, शदीद बर्फबारी, ये वजू करने का ना तो मौका होता था ना कोई तरीकेकार होता था। तो खुद एक सिपाही जो है उस जंग के, वो बयान करते हैं कि हमने देखा था कि एक शख्स को रुकू की हालत में, कितनी देर तक वो रुकू में रहा, उसकी कमर पे मिट्टी लाके रखी गई और सारे फौजियों ने उसकी कमर पे हाथ मार के उसी बर्फबारी में तयम्मुम किया है, और उसके बाद एक एक जगह पे जाकर सब लोग नमाजें पढ़ते रहे। यानी उस शदीद बर्फबारी में, घुमसान की जंग में भी नमाजों को फरामोश नहीं किया, जिस तरीके से यानी अमीरुल मोमिनीन के मानने वालों की याद उन लोगों ने ताजा की कि इतनी शदीद बर्फबारी थी, कहते थे कि खून जम जाने वाली कैफियत थी, लेकिन कमर के ऊपर और जगह पर कहीं मट्टी रखने की जगह नहीं थी, सिपाही को, एक फौजी को रुकू की हालत में रहना पड़ा, रुकू में उसकी कमर के ऊपर खाक लाके रखी गई और उस पर आके सब लोगों ने तयम्मुम किया और फिर जाके जो है वो नमाजें पढ़ी। उन मोर्चों के अंदर, इतने दहशतजदा माहौल के अंदर, उन मोर्चों के अंदर किस अंदाज से देखी नमाजें जो है उन लोगों ने जो है वो कायम की, ये मामूली चीज नहीं है, इन सबको देखना चाहिए किस वजह से इतने, पूरी दुनिया जिनको असलाह सप्लाई कर रही थी वो लोग कैसे शिकस्त खा गए, और एक कमजोर ताकत के पूरी दुनिया ने बॉयकॉट कर रखा था, वो किस तरह से फतह याब हुए नमाजों की ताकत से, कि घुमसान की जंग हो रही है और गोले दागे जा रहे हैं, उसी में जो फौजी जो है वो नमाज पढ़ रहे, उसी के अंदर कहीं हमने नहीं देखा किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर भी ऐसा कि जो जंगों में इस तरह से एक इलाही जज्बे के साथ फौजी जो है वो आ रहे हों और नमाजें जो है वो पढ़ रहे हैं। उसी नमाज पढ़ने के दौरान अक्सर फौजी शहीद हुए, उन्हीं नमाजों को पढ़ने के दौरान। कितनी आपके सामने ऐसी जो है वो मिसालें जो पेश की जाएं कि नमाजों की अदायगी के दरमियान उन लोगों को शहादतें इस अंदाज से मिली। तो इलाही जज्बों से, और जब वजू का मौका नहीं होता था और तयम्मुम करना होता था, तयम्मुम कर करके किस अंदाज से उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, और वाकयातन जो इमाम हुसैन की जो नमाज मैदान करबला में थी, इतने खौफ के आलम में दुरूद भेजिए मोहम्मद आलम, और इसी तरह से यानी उस वक्त उस मौके पर वो नमाज पढ़ रहे होते जब गोला बारूद जो है आकर गिर रहा होता था। जब भी एक आलिम दीन फरमाते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी की 80 साल की नमाजें उन फौजियों की मोर्चों में और महाजे जंग पे पढ़ी जाने वाली 2 रकत नमाजों से बदलने को तैयार हूं, 2 रकत नमाज से अपनी पूरी 80 साल की नमाजों को करने को तैयार हूं। तो अब बहरहाल देखिए कि, तो अभी इससे पहले भी जो जिक्र हुआ कि सख्त तरीन हालात में किस तरह से उन्होंने नमाज को जो है वो कायम किया। अच्छा, अब बहुत ज्यादा जब शदीद हालात हो गए और इमाम खुमैनी हमेशा, जैसे इससे पहले भी बात मरतबा जिक्र हुआ था कि नमाजों का सहारा लेते थे, हुज्जतुल इस्लाम आश्तियानी इमाम खुमैनी के करीबी रुफाका में थे, वो फरमाते एक वक्त इमाम खुमैनी घर पे बाकायदा हुकूमत के हमले का शदीद खतरा था और लोग किसी महफूज मुकाम पर इमाम खुमैनी को मशवरा दे रहे थे कि आप मुंतकिल हो जाएं। इमाम खुमैनी ने फरमाया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और मुसल्ले पर गए और उसी वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और उस नमाज की इतनी पावर थी कि हुकूमत को जो इरादा हमला करने का था वो किसी तौर पर वो हमले का खतरा टल गया। 1964 में लोग भागते हुए इमाम खुमैनी के घर के अतराफ में आकर जमा हो गए, कहा कि फौज हमला करने वाली, और सब लोग कहने लगे कि फौरन सब लोग घर के अंदर दाखिल हो जाएं, इमाम खुमैनी को अंदर से दरवाजे बंद कर लें और बाकी लोग ह्यूमन शील्ड के तौर पर बाहर रहेंगे। इमाम खुमैनी ने चीख कर कहा कि हरगिज नहीं, दरवाजे खुले रखो और सब लोग नमाज के लिए तैयार हो जाओ, सब लोग नमाज के लिए तैयार हो जाओ, अगर फौज हम पर हमला करे तो बेहतर है कि हम हालत नमाज में कामयाबी हासिल करें और उन्हें इस अमल के नतीजे में जिल्लत ख्वारी हासिल हो। नमाज से उस वक्त मदद ली, कितने मुश्किल तरीन मौके, जब भी मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बड़ा शदीद और सख्त मरहला है, लेकिन अगर ये बुजुर्गों की और आइम्मा की और अंबिया की तमाम सीरत हमारे सामने है किस नमाज को उन्होंने कैसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और किस तरह से अपना बचाव किया। इराक में जब जिला वतन थे इमाम खुमैनी, तो उनके बेटे खुद अहमद खुमैनी नकल करते हैं कि इराकी हुकूमत निकाल रही थी इमाम खुमैनी को और कह रही थी अब वहां से हमें कुवैत जाना था, और बड़ा शदीद खौफ व हिरास का आलम था, बड़ी शदीद इजाजत शदीद जो है वो परेशानी थी कि आखिर क्या होगा, ना मालूम वो लोग हमें कुवैत वाले जो है यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त भी देंगे इजाज़त नहीं देंगे। हालात बहुत ख़राब थे, हम लोग बड़े शदीद परेशान थे। सब लोग इमाम खुमैनी को देख रहे थे लेकिन कहीं कोई परेशानी के कोई आसार उनके चेहरे पर नहीं थे, और इंतहाई इत्मीनान के साथ हम सब लोगों की तो नींदें उड़ गई थी, लेकिन इमाम खुमैनी जो है वो सोने के लिए गए, अपने टाइम पर सोए और फजर से 2 घंटे पहले उठ गए और उसके बाद नमाज शब में मशगूल हो गए। और फिर कह रहे पूरे सफर कुवैत में, क्योंकि इराक से और कुवैत तक का सफर बाय रोड किया था, जिस जगह पे मंजिल आती थी वहां एक वजू तजदीदी करते थे, ये उनके उसी सफर की तस्वीर, हर जगह पे वजू कर रहे हैं। वजू खुद एक बहुत बड़ी ढाल है तमाम मुश्किलात और परेशानी से बचने के लिए। नमाज नहीं भी पढ़ रहे हो तो अगर आप दायमुल वजू हो जाएं, बार बार वजू करने की आदत डाल लें, तो कितनी मुश्किलात और परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। जहां कहीं रुकते थे फौरन एक वजू तजदीदी करते थे, पूरे सफर कुवैत में रस्ते में जाते हुए नमाजें पढ़ते हुए और इस तरह से जो है वहां पहुंचे। और खुद इमाम खुमैनी की जो बेटी थी, बेटी हैं फरीदा मुस्तफा भी, वो खुद कहती हैं मेरे वालिद ये फरमाते थे, यानी खुद इमाम खुमैनी, कि जब शाह के आदमी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए और मुझको कौम से तेहरान ले जा रहे थे, तो मुझे गाड़ी में बिठाया और रास्ते ही में फजर की नमाज का वक्त हो गया, तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई अगर तुम मुझे 2 रकत नमाज फजर पढ़ने की इजाजत दे दो तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। उन्होंने कहा नहीं, हमें शाह की तरफ से इजाजत नहीं, आपको गिरफ्तार करके ले जा रहे। कहा कि मैं एक निहत्ता आदमी हूं, तुम लोग मुसल्ला हो, मुझसे तुम्हें क्या खतरा हो सकता है, मुझे फकत 2 रकत नमाज पढ़नी। कहा कि नहीं बिल्कुल इजाजत नहीं। यहां तक कि इमाम खुमैनी ने कहा अच्छा कम से कम मुझे तयम्मुम करने की इजाजत दे दो। गाड़ी रोड के किनारे पर रोकी गई, इमाम खुमैनी के लिए दरवाजा खुला, हाथ सीट पे बैठे बैठे ही नीचे झुकाकर मिट्टी के ऊपर मारे और तयम्मुम किया, और कह रहे उसके बाद मैंने नमाज फजर गाड़ी में इस अंदाज से पढ़ी कि जो पुश्ते क़िबला थी। कह रहे शायद मेरी जिंदगी की ये 2 रकत नमाज ही मुझे खुदा कबूल कर ले, जो मैंने इस अंदाज से पढ़ी थी, ना मेरा वजू था, मैंने तयम्मुम करके पढ़ी थी और क़िबले के बजाय पुश्ते क़िबला होकर नमाज पढ़ना पड़ी क्योंकि गाड़ी मुखालिफ सिमत में जा रही थी। तो वाकई ये चीजें देखिए इस तरह की हैं कि इन मौकों शदीद खौफ व हिरास और ये जो माहौल है इसके अंदर नमाजों से मदद लेना, और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी जो नमाज थी वहां पर अल्लाह मुसल्ली अला मुहम्मद देखिए अगर कोई भी खौफ दरपेश होता है खासतौर पर जैसे जिहाद वगैरह, तो 4 रकत ही नमाज 2 रकत में तब्दील हो जाती है, जिसे नमाज खौफ कहा जाता है। उसमें पेश इमाम तो नमाज पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो जो 2 रकत में तब्दील हो गई उसमें से भी जो एक ग्रुप मुकाबला कर रहा होता है दुश्मन का, एक ग्रुप नमाज जमात पढ़ रहा होता है। जो नमाज जमात पढ़ रहा है उसके लिए फिर हुक्म ये होता है कि वो 1 रकत नमाज तो जमात के साथ पढ़े, और उसके बाद अगली जो रकत नमाज है वो फुरादा की नियत से पढ़कर और जल्दी उसको ख़त्म कर दे, और फिर नमाज को जल्दी ख़त्म करके फौरन वो ग्रुप जो है दुश्मन से मुकाबले के लिए चला जाए, जो पहले मुकाबला कर रहा था वो आकर नमाज जमात में शामिल होकर और फिर वो भी जमात का सवाब इसी अंदाज से ले ले। तो इस तरह से ये नमाज खौफ पढ़ी जाती। अच्छा, अब ये दुश्मन से हिफाजत के लिए, और बाकायदा इसका हुक्म कुरान के अंदर भी आया है, और जब पैगंबर इस्लाम अपने असाब के साथ जब मक्के की तरफ का सफर कर रहे थे और हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे थे, तो वहां पड़ाव डाला था पैगंबर ने, तो खालिद बिन वलीद ने जो बज़ाहिर उस वक्त भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, 200 लश्करियों के साथ पहाड़ों से वो मुआयना कर रहा था, और जिस वक्त जोहर की नमाज का वक्त आया और बिलाल ने अजान देनी शुरू की और उसके बाद मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि मुसलमान नमाज जमात के और खुद नमाजों को अव्वल वक्त पढ़ने के बहुत शौकीन है, तो हम ऐसा करेंगे जिस वक्त ये लोग नमाज असर में मशगूल होंगे हम इन पर हमला कर देंगे। तो उसी वक्त ये नमाज खौफ के सिलसिले में पैगंबर के ऊपर वही नाजिल हुई, और ये वाला तरीक़ेकार बयान किया गया कि इस तरह से नमाज खौफ जो है वो पढ़ी जाए, यानी वाजिब नमाज इस अंदाज से जो है पढ़ी जाएगी, तो खुद इसके अंदर दुश्मन से मुकाबले का एक ताकत और एक पैगाम भी उस सिलसिले में है। और अगरचे मदरसे ने सिलसिले में एक काफी अरसे पहले क्लिप भी बनाया था, वो हम आपको अभी दिखाते हैं, वो सिम्बॉलिक है, उसकी बहुत ज्यादा तफसीलात में बारीकबीनी के साथ आप कहें कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही वाकया वहां पर हुआ था, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको अंदाजा हो जाए कि कितना शदीद वो पिक्चराइज करने के एतबार से, यानी वो कितना सख्त तरीन मौका था कि नमाज खौफ जिस वक्त पढ़ी जा रही होती कि उस वक्त जान जाने का कितना शदीद खतरा मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी नमाजों की हिफाजत कैसे की जाती। इंशाल्लाह मरहले वार हमारी गुफ्तगु अगली दफा से बराह रास्त एक एक करके नमाज के अहकाम पर, उसके अखलाकियात पर शुरू हो जाएगी। तो और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तवील अरसे तक जारी रहेगा, यहाँ तक कि मुकम्मल नमाज की मारिफत अपने तई हम हासिल करने की अपने नाकिस मालूमात के मुताबिक कोशिश करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वाल तय्यबीन अत्तहीरीन।
الجنة يا مولاي، الجنة يا صاحب السماء.